فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے, وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے, ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے, یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا. یہ بھی شیطان ایک دھوکہ سکھاتا, کہتا ہے ہمارے خاندان میں کوئی جاب کرتے ہی نہیں, ہمارے خاندان میں تو سلیو لیس کا فیشن ہے, ہمارے خاندان میں تو جی کیوں لاٹس پہنتے ہیں, میں اپنی فیملی میں کیسے ڈھیلے کپڑے پہنوں, وہاں تو سب ٹائٹس پہنتے ہیں. تو کہا باپ دادا کے نام پر ایسے کام کہہ دیتے ہیں اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا. ہاں جی اللہ کہتے ہیں خاندانوں کو ملاؤ, بڑوں کی بات مانو, تو بس اب ہم ان کی غلط چیزوں کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اقول ان اللہ لا یامر بالفحشاء, کہا ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا, کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کرتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے, ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا اور مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو کر رہ گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو, ہاں لیکن حد سے تجاوز نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کیا کہتے ہیں, ہر مسجد, اور مسجد جہاں مراد سجدہ کا نماز, ہر نماز سے پہلے زینت لو, اور زینت سے مراد جہاں لباس ہے ٹیکس کے ساتھ. تو اس کے پیچھے واقعہ کیا آتا ہے کہ مکہ والوں کا جب زوال شروع ہوا تو مذہب کے نام پہ ہی نیکڈ ہو گئے, جب کعبہ کے طواف کے لیے نکلتے تو اپنے کپڑے پورے اتار دیتے, عورتیں صرف اپنے پرائیویٹ پارٹس پر ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتی, کوئی پوچھتا یہ کیا کر رہے ہو تو کہتے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ہم ان کپڑوں میں اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے. دیکھیے شیطان کیسی عقل کی بات سکھاتا ہے. اور مادر ذات ننگے جا کے کعبہ میں طواف کرتے تھے, یہ اتنی بڑی بے حیائی تھی. اللہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو, اللہ تمہیں کبھی اس طرح کے کاموں کا تو حکم نہیں دے گا. اور آج بھی آپ دیکھیے گا کہ کلچر اور مذہب کے دام پر دنیا میں سب سے زیادہ نیوڈیٹی پھیلی, بے حیائی کے نام پہ اللہ کہتے ہیں نہیں کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ کو مصرف نہیں پسند. اسراف کیا ہوگا, آپ دیکھیے پیچھے ہم نے بات کی تھی لباس و تقوی کی, یہاں بات ہو رہی ہے اسراف کی, یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. تقوی کیا ہے کہ آپ کے اندر کیا اور اوپر کی خوبصورتی کیا ہے آپ کا لباس. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی, جیسے پیزا آپ لیتے ہیں کہیں بھی, کسی بھی جگہ کا پیزا آپ کو اچھا کب لگتا ہے, جب اس کا بیس مزے کا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, سافٹ ہے, پھولا ہوا ہے, نائس ہے. اب وہ کہتے ہیں ٹاپنگ کیا چاہیے, کوئی اس میں پائن ایپل ڈال لیتا ہے, کوئی اس میں اولیوز ڈلواتا ہے, کوئی کچھ, ٹاپنگ سے اتنا فرق نہیں پڑتا شرط کہہ کے پیزے کا بیس مزے کا ہو. اور بیس ہو خراب تو اوپر آپ چاہے چھ ٹاپنگز ڈلوا لیں آپ کو مزہ نہیں آتا. اس مثال میں سمجھیے کہ جو لباس و تقوی ہے نا, یہ آپ کا میرا بیس ہے. اندر کیا ہے, سیلف پروجیکشن ہے, بڑا بننا چاہتی ہوں, لوگوں کی نظروں میں نمایاں ہونا چاہتی ہوں, تو آپ کا ڈوئی خراب ہے. آپ موتی والا پہنے ستاروں والا پہنے, وہ آپ کو نقصان دے گا. اس کے برعکس اگر آپ کا دل اچھا ہے, آپ تحدیث نعمت کے لیے پہنتے, آپ لوگوں کو اس دین کی قدر دکھانے کے لیے پہنتے, تو امام مالک مثال ہے آپ کے لیے. آپ کو تو امام مالک رحمہ اللہ ایک دفعہ جو ایک جوڑا پہن کے حدیث کی کلاس میں آتے تھے دوبارہ نہیں آتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے, کہا اس صاحب حدیث کی تکریم کے لیے. آج کی زبان میں آپ کہہ لیں میں اتنی عزت کرتا ہوں اس علم کی کہ میں اس کے لیے پہنتا ہوں. اور سچ ہے کہ نہیں, ہم جس چیز کو ویلیو دیتے ہیں ہم اس کے لیے سجدے سنورتے ہیں نا. ہمارے گھر کی قریبی شادیاں ہوتی ہیں ہم ہزاروں کا پہنتے ہیں کیونکہ ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے, ہماری دوستوں کے گھر میں شادی ہم خوشی سے پہنتے ہیں, اور کہیں دور پار جانا پڑے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی چلاتے ہیں. یہ ہم شادیوں میں کیوں پہنتے ہیں, کیونکہ ہم شادیوں کو عزت دیتے ہیں. ہم پارٹیز میں کیوں پہنتے ہیں, پارٹیز کو عزت دیتے ہیں. جس دن آپ اللہ کے دین کو عزت دیں گے نا, سب سے بہترین لباس آپ یہاں پہنیں گے, ایک تو دل کی خوشی اور دوسری یہ کہ صدقہ جاریہ. اچھے کپڑے پہنو لیکن جس دن اچھے کپڑے پہن کے کام سب سے برے کرتے ہو تو پکڑ نہیں ہوگی, یہ اسراف ہے. इसराफ को भी समझ लीजिए कि इसराफ के कि जहां जिस मौके पे जैसे लिबास की जरूरत थी वैसा पहनो। पता चला मियां साहब के पास है और वो चाहते हैं कि बाहर इतनी रंगीनी है और मैं उसको देख नहीं सकता, बेगम घर में है, बेगम आप अच्छे कपड़े पहने, और आप कहती हैं मियां हैं, पकड़ के आप सर पे मोटा दुपट्टा लपेटती हैं, फुल स्लीव बाजू नीचे, आपने ग्लव्स सॉक्स पहनी और आप आके बैठ गई, मैं कैसी लग रही हूँ? वो कहेंगे जहर लग रही हैं आप मुझे। ये इसराफ होगा, वल्ला ही ये इसराफ होगा। अल्लाह ने आपकी खूबसूरती का सबसे ज्यादा हकदार आपके शोहर को बनाया, आप खुद भी नहीं अपने आप को इतना इंजॉय कर सकते जितना आपके शोहर करें। आप शोहर के सामने बने जो पड़े, आप वेस्टर्न कपड़े पहने, आप उधर नाइटीज पहने, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप सिल्क पहने, आपको जो अच्छा लगता है आप पहने। अल्लाह ने मर्द के औरत के लिए ये रखा, अंतुम लिबासुल्लहुन्न लिबासुल्लकुम, पीछे पड़ चुके। अब मसला के इसराफ इधर तो ये हुआ कि आप उनके सामने ऑपोजिट हो गई, और दूसरी सूरत है कि कोई अंडर गारमेंट्स में बाहर आ जाए, ये भी इसराफ है। जो अंदर की कपड़े थे उनको आप ओपन है पब्लिक में लाएं और तस्वीरें बड़ी बड़ी कड़ी कर दें कि बच्चों की या खत्म हो जाए, ये भी मुसरिफ लोग हैं जिन्होंने आज नजरें इतनी गंदी कर दी। कपड़े को मौके को देखिए, याद रखिए लिबास बंदे की शख्सियत का आईनादार होता है। लोगों की चॉइस से आप उनकी शख्सियत बता सकते हैं कि वो क्या अंदर से कैसे हैं। उलझे हुए प्रिंट पहनने वाले उलझे हुए होंगे, और रंग बिरंगी किसी किस्म की जो सेंस नहीं है उनके अंदर भी इतनी ही गंदगी होगी। फिर इसी तरह आप देखिए ये भी इसराफ है कि माशाल्लाह दुपट्टा तो आपने 8 मीटर लंबा लिया हुआ है तो सर वो आपका फिर नहीं झांक रहा और वो आपके पीछे झाड़ू फेरता हुआ रहा है। एक एड थी मेरे पास कहीं पुराने नोट्स में होगी, तो किसी एड में था एक लड़की खड़ी है और उसने ऐसे कलर से सूट पहना है तो एक लंबा दुपट्टा उसके हाथ में ऊपर पूरे वो छत सी बनी हुई है तो वो दुपट्टा रखा हुआ, तो वो मैं सूरत नूर की आयतों में मैं दिखाया करती थी कि अल्लाह कहता है केवल यदरिब नबी खुमरी हिन्न आला जुयूबी हिन्न, तुम अपने सीनों पर डालो दुपट्टों को, तो ये हवा में फैला रहे, तो ये भी इसराफ है। आज आप देखिए जितने महंगे कपड़े उतने सी थ्रू, जितना कीमती लिबास बाजुओं से महरूम। आप जाइए जरा अपने मुसलमानों के कपड़े देखे, छोड़ दीजिए वेस्टर्न कपड़ों को, आप जरा इस वक्त वेडिंग ड्रेसेस तो दुल्हनों के जाके देखिए, फिर समझ आएगा ये अल्लाह को इतना गुस्सा किस बात पे आता है। कोई अंग नहीं छुपता, पहले दुल्हन का मतलब कहता है छुपी हुई, घूंघट में लिपटी हुई, उसका घूंघट उठा के लोग देखते थे, अब वो कहते हैं कि सबसे पहले आओ मूवी मैं नहीं देख के चला जाए तो बड़ी बात है। ऐसे ऐसे गंदे वाक्यात हो रहे हैं कि आप सुने तो आपका खून खौल जाए। तो जब एक मुसलमान औरत इस तरह की लिबास के लिए केयरलेस होती है तो नुकसान है। क्या करें, कीमती लिबास नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं। देखिए हर एक का तकवा फर्क होगा, हजारों कमाते हैं आपके शौहर, अल्लाह उनको और भी दे, आप हजारों का भी लिबास पहन ले तो इसराफ नहीं है। हो सकता है आप $1,000 का जोड़ा पहन सकती हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आप कहती हैं मैं 200-300 का ही पहन लो, आपका ये भी इंशाल्लाह तआला लिबास तकवा है। और एक दूसरा है वो कर्जा लेके उधार लेके या शोहर को सता के, हो सकता है उसका मियां बेचारा 500 तक की बर्दाश्त कर सकता था और वो अगर 600 का भी पहनेगी तो पकड़ी जाएगी, ये आपकी हैसियत। और याद रखिए कि इंसान के जो तकवा का मेयार है ना वो ड्रेस कोड से नहीं है, कीमत से नहीं है। लोग कहते हैं जो मोती सितारे फूल बूटे, किसने मना किया? अल्लाह अगली आयत में देखिए क्या फरमा रहे हैं, अगर आप इस आयत को देखें तो कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिबादिही, ऐ नबी इनसे कहो, किनसे कहो, दीन के नाम पे सख्ती बरतने वालों को और जिन्होंने रहवानियत को आम कर दिया, इन सब दीन वालों से पूछो किसने अल्लाह की जीनत को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था। देखिए अल्लाह को गुस्सा आ रहा है, तुम क्यों बेढंगे रहते हो और तुम सोचते हो बड़े नेक हैं। और ये भी एक झूठा तकवा है कि लोग हमें नेक समझे इसलिए हम सीधे साधे रहेंगे, ये भी एक तकवा है। दो तरह का डिस्प्ले होता है, एक होता है बहुत डिस्प्ले करते हैं कि आपको लोग देखें कि आप कितने अच्छे हैं, क्या आपकी जिंदगी का मकसद है और आप यही कुछ कर रहे हैं, और दूसरा ये भी डिस्प्ले कि लोग हमें बहुत नेक करें, बहुत नेक समझें। तो याद रखिए सारी बात का खुलासा बता दूं कि लिबास मकसद नहीं है लेकिन मकसद के हसूल का जरिया। जब लिबास खुलता है ना तो अल्लाह से ताल्लुक टूटता है, जितना जिस्म पर लिबास कम होगा उतना अल्लाह से ताल्लुक कम होगा, जितना आपका लिबास कवर्ड होगा ढका छुपा होगा आप अल्लाह से करीब महसूस करेंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब लिबास आराइश वाला होता है, नरमी वाला होता है ना, तो उस इंसान में नरमी आती है, बेजा सख्ती आने लगती है। जब आप खुद कुछ नहीं पहनते ओढ़ते तो आप दूसरों को जरा पहनेंगे ना, देखेंगे आप कहेंगे गुनाहगार जहन्नमी इसराफ करते हैं, देखो ज्वेलरी पहनते हैं, देखो ये कपड़े अच्छे पहनते हैं, देखो इन्होंने ब्रीजे का पहन लिया, इन्होंने वो पहन, आप बदगुमान हो जाएंगे। और अगर आप खुद वही काम कर रहे हैं जो अल्लाह ने जायज करार दिया, आप लोगों के डर से उसको क्यों छोड़ें? क्या लोग इतने जजमेंटल हो सकते हैं? फिर इसी तरह से आप देखिए कि बास दफा क्या होता है कि इंसान दूसरे को दिखाता है। चंद चीजें नोट कीजिए जो वाकई बहुत नापसंदीदा है। नंबर एक, किसी को जलाने के लिए पहनना कि बस मेरा जोड़ा देखे तो कोई जल के राख हो जाए। हदीस में आता है जिसने शो ऑफ के लिए पहनाया उसको क्यामत के दिन अल्लाह खुजली का लिबास पहनाएगा। फिर दूसरी बात है कर्जे लेकर नहीं पहनना, दूसरे को के तकाबुल में नहीं पहनना। फिर ऐसी जगह नहीं पहनना कि जहां कोई बेचारा पहन नहीं सकता। आम लोगों की महफिल में जाए ना तो आम कपड़े पहने, अमीर लोगों की महफिल में जाए तो अमीर पहने ताकि वेवलेंथ मिले, वरना वो हैं एक दर्स वाली आई थी वो उनके तो वैसे ही इतनी बू आ रही थी, वो कभी उनका माइंड लेवल आपसे चले गई नहीं। अगर आप देखते हैं कि वो कीमती कपड़े पहनते हैं, अल्लाह ने आपको दिए पहने, क्या बड़ी बात है? यकीन कीजिए कीमती या नकारा दोनों दुनिया के चीथड़े। अल्लाह कभी आपसे मेरे से इन छोटे छोटे टुकड़ों का हिसाब नहीं लेगा। लेकिन आप बहुत गरीब के घर के और आप इतना जेवर पहन के चले गए, वो हसरत में देख रहे हैं, हाय हमारे पास भी होता, ये भी इसराफ होगा। और बहुत अच्छे लोगों में गए और बिल्कुल गैर ले, आप परेशान होंगे। अपने आप को कभी डिसरिस्पेक्टफुल ना करें। आप शादी में गए किसी के, सबने अच्छे कपड़े पहने और आप लॉन का जोड़ा पहन गए, क्या लोग सोचेंगे? आपके से एक जोड़ा भी नहीं है तो आपने अपना मजाक बनाया। ये नहीं करने की जरूरत। हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिए, अपना तमाशा ना बनाएं और अपने आप को बेहतरीन तरीके से रखिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। और तकवा का जरूरत से ज्यादा इजहार भी इसराफ होता है। इससे बचेंगे तो बहुत सारे लोग दीन में आएंगे। हुआ क्या, पिछले सदियों में हमारे दीन मर एक मसला हो गया, और वो क्या कि लोग सिर्फ इसलिए दीनी महफिलों से कट गए क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ सफेद दुपट्टे ही ओढ़ के आ सकते हैं, यहाँ आने से पहले हमें अपना हाल हुलिया बदल नहीं पड़ेगा वरना नो एंट्री की बात होगी। इससे क्या हुआ कि उन्होंने ये नहीं किया कि वो चीजें छोड़ दें, उन्होंने वो जगह छोड़ दी। तो जब अल्लाह ने एक चीज को हलाल किया, आप दूसरों को क्यों रोकते? और खास तौर पर कभी अल्लाह आपको दावत के मैदान में आगे ले आए, जब तक आप अपने ऑडियंस को पढ़ेंगे नहीं, उनके लेवल पे नहीं जाएंगे, आपकी उनकी बात ही नहीं बनेगी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर तरह की इसराफ से बचाए। और यहां आप देखिए कि आखिरी बात करके आगे चलते हैं, और वो कहें कि आज इंसानियत ने अल्लाह को नाराज किया, लिबास उतरे जिसकी वजह से वो दुखी है। आज आप देखिए जितने लोग अपने लिबास का ख्याल नहीं रखते, जिसमें आपको इर्द गिर्द लगे हुए तस्वीरें भी नजर आएंगी, कितनी उनके पास है दुनिया की नेमतें। नाइक के जूते पहने होंगे, इंश्योरेंसेस उनकी हैं, उनके पास हर नेमत है, लेकिन उनके चेहरों पे खुशी नहीं। क्यों? अल्लाह नाराज है। और अल्लाह ताला खुश होता है ना तो आपकी थोड़ी सी चीजों में इतनी बरकत दे देता है। हाँ ये जुल्म है कि आप फिर नमाजों को जाया करें, जिंदगी का मकसद बने। एक है कि आप एक जोड़ा बनाने के लिए एक हफ्ते का जिहाद करें, सुबह जाके राबी सेंटर बैठ जाएं और शुरू हो जाएं ढूंढने चीजें, देखें देखें, फिर ग्लैमर वन से आप उसकी मैचिंग ढूंढते हैं, फिर आप डिफेंस उधर धोराजी से उसकी लैसें ढूंढते हैं। ये मुझे सारे पता जगह, इसीलिए क्योंकि यहाँ एक लंबा अरसा हम रहे। स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे कराची में, जब क्लासेस होती थी तो मैं उनसे ये सारी चीजें सीखती थी, कैसे वो मेहनतें करती हैं और वो खुद बताती। अब आप एक जोड़ा जो पहनते हैं, मिसाल है हम सब ने इस वक्त जो सूट पहने हुए, किसी ने हो सकता है इसमें 10 नमाजें जाया की, उसने 10,000 रुपया लगाया, और किसी को कुछ एक पैनी नहीं लगाई, उसको किसी अल्लाह के बंदे, किसी अपने प्यारे, किसी माँ बहन ने तोहफे में दे दिया। इसमें भी फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि बात काफी समझ आ गई है। इसको मकसद ना बनाए, इसके लिए अल्लाह को नाराज नहीं करना, पैसा नहीं लगाना, अपनी जात पे लगाते हुए 100 दफा सोचे। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, जब हम खुद अपने ऊपर नहीं लगाते, 10 दफा सोचते हैं उस्मान की तरह, उतना ही ज्यादा मिलता है। इमाम मालिक से किसी ने कहा कि ये आपके जो कपड़े हैं ये कहां से हैं? कहते बस क्या करूं, लोग मोहब्बत करते हैं, वो इधर से कोई देता है उधर से, मैं उनकी खुशी के लिए पहन लेता हूँ। अच्छा एक दफा पहन के करते क्या? कहा किसी को और तोहफे में दे देता हूँ। हम कहते हैं हम उस वक्त मासी को देंगे जब इसकी डोरियां भी खराब हो चुकी होंगी और देते हुए बटन भी छीन लेंगे। किसी बेटी को देखें अगर वो कहे ना अम्मा ये जोड़ा दे दो किसी को, तो माँ कहे अभी अच्छा भला भी क्यों दे रही हो? अब आप शर्मिंदा होने लगे हैं। तो आगे चलते हैं। हमारे यहाँ तसव्वुर किसी को कब दो जब उसके 7 रंग बदल चुके हों। अच्छा पहने दे दें, थोड़ी दफा पहने, 2-4 सलीके से पहने तरीके से, फिर आप किसी बहन को दे दें, खाला की बेटी को, पुप्पो की, किसी को, वो 2-4 दफा शौक पूरा कर ले, फिर किसी को दे दें, किसी दीनी इदारे को दे दें, कोई डोनेट कर दें। अपने कपड़ों को रिसाइकल करना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। आपको होता है कि हमारा हजारों रुपया जो जम लगा होता है वार्डरोब्स में पड़ा हुआ, वो भी इसराफ है। ये तो चीजें आगे आप जाते जाएंगे तो खुद ही इंशाल्लाह कुरान आपको सिखाएगा। फरमाया ए नबी, आयत नंबर 33 से, قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اے نبی ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں. اب نوٹ کیجئے حرام کیا ہے, اچھے کپڑے حرام نہیں ہیں, بلکہ حرام کیا ہے؟ نمبر ایک, بے شرمی کے کام, ख्वाह खुले हों या छुपे हों। दूसरी चीज गुनाह हराम है। तीसरी चीज हक के खिलाफ ज्यादती, और ये कि अल्लाह ताला के साथ किसी ऐसे को शरीक करो जिसके लिए इसने कोई सनत नासिल नहीं की, और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके मुतालिक तुम्हें इल्म ना हो कि वो हकीकत में इसी ने फरमाई है। हर कौम के लिए एक मोहलत की मुकर्रर मुद्दत है। जब किसी कौम की मुद्दत आन पूरी होती है तो एक घड़ी भर की ताखीर और तकदीम नहीं होती, यानी जब मौत का वक्त आता है तो उस वक्त कोई उसको टाल नहीं सकता उधर से। और ये बात अल्लाह ताला ने तखलीक के आगाज में ही साफ फरमा दी थी कि बनी आदम याद रखो, अगर तुम्हारे पास खुद तुम ही में से कोई ऐसे रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयात सुना रहे हों, तो जो कोई नाफरमानी से बचेगा और अपने रवैये की इसलाह करेगा इसके लिए खौफ और रंज का कोई मौका नहीं होगा। देखिए कितना प्यारा मैसेज है, जो हो चुका हो चुका, आगे से इसलाह कर लो। और ऐसे लोगों को अल्लाह हमेशा खुशखबरियां देता है। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका असहाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। और जो लोग हमारी आयात को झुठलाएंगे और इनके मुकाबले में सरकशी बरतेंगे वही अहले दोजख होंगे जहां वो हमेशा रहेंगे। आखिर इससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची आयात को झुठलाए। ऐसे लोग अपने नविश्ते तकदीर के मुताबिक अपना हिस्सा पाते रहेंगे, यहाँ तक कि वह घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करने के लिए पहुंचेंगे। इमेजिन कीजिए मौत का वक्त किसका, जो सारी बातों को सुन के कज़्ज़बू डिनायल फॉर्म में चला गया, आई डोंट केयर, बस तक भरू, मैं नहीं कर सकती, ये मेरे से नहीं होता, ये किबर होता है। बतर अल हक की वकीमतिन नास, हक बात सामने आ जाए और इंसान उसको इस ख्याल से झुटला दे कि मैं ये काम करूंगी तो मैं छोटी बनूंगी, मैं इतनी पढ़ी लिखी औरत, मैं फुला अफसर की बीवी और मेरे इतने बड़े बड़े लोगों से टर्म्स है। जब ऐसे कुछ स्लोगन बोलकर इंसान अल्लाह के वाजे हुक्मों को पीछे डाल देगा तो उसकी मौत के वक्त फरिश्ते क्या कहेंगे। हाईलाइट करना चाहें तो कर लीजिए। कालू ऐना मा कुंतुम तदून मिन दूनिल्लाह कालू दल्लू अन्न व शहीद अला अन्फुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। बताओ अब कहाँ है तुम्हारे वो सब माबूद जिनको तुम अल्लाह की बजाय पुकारते थे। वो कहेंगे वो सब हमसे गुम हो गए, और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि हम वाकई मुनकरे हक थे। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ तुम भी इसी जहन्नुम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए गिरोह जिन्नो इंस जा चुके। हर गिरोह जब जहन्नुम में जाएगा, इमेजिन कीजिए कोई बहुत तकलीफ दे माहौल है और लोग उसी में और जा रहे हैं तो क्या होगा। हर गिरोह जब जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपने से पहले गिरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, यानी बेटी बेटा माँ बाप पे लानत करेंगे कि इन्होंने हमें क्यों ना रोका, हमें क्यों ना टोका, ये हमसे डर क्यों गए। हत्ता के जब वहां सब जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला गिरोह पहले गिरोह के हक में कहेगा रब ये लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया था, बस इनको आग का दोहरा अज़ाब दे। अब ये किसी का भी कोई हो सकता है, दीन के नाम पे भटके या दुनिया के नाम पे। हर वो बंदा जिसको देकर हमने ट्रेंड सेट किए, जिनकी बातों को हमने कॉपी किया, हम उनको देखे कि अल्लाह हम इनको देखते थे, इनको पकड़। जवाब मिर्शाद होगा हर एक के लिए दोहरा साहब है मगर तुम जानते नहीं हो। यानी जिसने पहली दफा टाइट्स को आयम किया होगा लोग उसको देखेंगे अल्लाह उनको पकड़ हमें ना पकड़, वो कहेंगे अल्लाह इनमें क्यों पकड़ना है, हमने इनको रोका तो नहीं था। और इस तरह जहन्नुम में लान तान होगी। आज दुनिया में भी देखिए जिस घर में लड़ाई हो, अल्लाह ना करे घर के मर्द का टेम्परामेंट लूज है या बीवी का मिजाज टेढ़ा है, वो घर जहन्नुम बन जाता है। और ये तो रियल जहन्नुम। और रिवायात में था कि जहन्नुम के अजाबों में एक बहुत बड़ा अजाब झगड़ों का, लड़ाइयां झगड़े फाइटिंग और किलिंग और कुछ वो उसको कह रहे हैं। और दुनिया में भी ऐसे ही होता है, आप कोई काम मिलकर शुरू करते हैं बहुत अच्छा होता है, अब वो काम खराब हो गया तो आप देखिए जो ही काम खराब होता है ना साथ मिलने वाले भी दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। और कुछ ना होगा ना, आप मजे से गाड़ी में बैठे एक घंटे से सफर कर रहे हैं, जरा सा एक झटका लगेगा ना तो सारे बोलेंगे ड्राइवर से देख के चलाना था तुम्हें नजर नहीं आया, या स्पीड ब्रेकर था क्यों, ये तो आप भूल गए कि वो इतनी देर से चला रहा है, लेकिन जरा बम्प आया तो आपने बोलना शुरू किया। इसी तरह लोगों की अमूमन ये आदत होती है कि वो अपनी नाकामियों और अपनी तबाहियों का जिम्मा दूसरे को ठहराते हैं, तो जवाब मिलेगा सभी दोहरे हो, तुम्हें भी और तुम्हें भी, तुमने अकल इस्तेमाल नहीं की, क्यों आंखें बंद करके वो काम किया। और पहला गिरोह दूसरे गिरोह से कहेगा अच्छा अगर हम काबिले इल्जाम थे तो तुम्ही को तो हम पर कौन सी फजीलत हासिल थी, यदि हमने तुम्हें फोर्स नहीं किया, अब अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मजा चखो। और याद कीजिए कि क्यामत के दिन माँ बच्चों के झगड़े बहुत होंगे, वहां बेटियां लड़ रही होंगी, अम्मी आप हमें फजर पे क्यों नहीं उठाती थी, हम आपके सामने ऐसे चलते फिरते थे, आप हमें क्यों नहीं रोकती थी। देखिए दुनिया में हम दीन की बात पे लोगों को टोकते नहीं है, क्यों? कहते हैं घर का माहौल खराब ना हो, दोस्तों में खुशी रहे, यहाँ के झगड़ों से बचे, जहन्नुम में जाके झगड़ना पड़ा तो कौन से बुरे हैं, अल्लाह ताला हम सबको बचाए। और ब्लेम गेम खेल रहे हैं सब, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, कब अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मजा चखो, खुद को कोसो दूसरे को नहीं। इन अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अनहा, यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया और इनके मुकाबले में सरकशी की है। चंद सेकंड गौर करते हैं कहीं तकबर तो नहीं। देखिए तकजीब कौन करता है, मुसलमान। कुफर काफिर है, वो कहता है मैं नहीं मानता कुरान को, उसके लिए कभी कज़्ज़बू नहीं आएगा, वो मुनकर है। तकजीब कौन करता है, डिनायल, एक कहता है डिसबिलीव, वो तो काफिर है। डिनाई कौन करता है, जो मानता है मैं मुसलमान हूं लेकिन हुक्म को नहीं मानता। तो अल्लाह ताला कहता है जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और इसके मुकाबले में सरकशी की, इनके लिए क्या होगा। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस्समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज न खोले जाएंगे, उनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊंट का गुजरना। ये जरबुल मिसल है, प्रोवर्ब है, किस तरह से जन्नत में ऐसे लोगों का जाना नामुमकिन है। और ये कब नहीं दरवाजे खुलते, बाज कहते हैं कि जब वो लोग फिर दुआएं करते हैं उनकी दुआओं की कबूलियत के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते। और जो इसकी लंबी तफसीर है, जो हम इस पे दर्स भी हो चुके हैं और इसकी तफसीर आप सुनना चाहें तो मरने के बाद इंसान की रूह के साथ क्या होता है, इस पे दर्स एक है जर्नी ऑफ द सोल, कई जगह किया हुआ है, मुझे याद है इस नाम से सेव भी हुआ था कई लेक्चर्स में, अगर मिले तो इन लोगों को भेज दें, इंतहाई इंटरेस्टिंग। अक्सर हम सोचते हैं कि मरने वाले के साथ क्या होता है, हम तो दुनिया में कुछ और कर रहे हैं वहां क्या, तो इन आयतों की रोशनी में स्टेप बाय स्टेप मोमिन के साथ क्या होता है और काफिर के क्या साथ क्या होता है, तो आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। वकज़ालिका नज़्ज़िल मुजरिमीन, यहां देखिए काफिरों का लफ्ज नहीं है, क्रिमिनल्स, मुजरिम कौन, मुजरिमों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, इनके लिए तो जहन्नुम का बिछोना होगा और जहन्नुम ही का उड़ना। रिवायत से पता चलता है कि गुनाहगार शख्स की कब्र में जहन्नुम से खिड़की खोल दी जाती है और उनके नीचे मैट्रेस भी जहन्नुम का, ऊपर ब्लैंकेट भी जहन्नुम का। ये है वो जज़ा जो हम जालिमों को दिया करते हैं, बखिलाफ इसके जिन लोगों ने हमारी आयात को मान लिया और अच्छे अच्छे काम किए। इस बात में हम हर एक को उसकी इस्तेताद ही के मुताबिक जिम्मेदार ठहराते हैं। वह अहले जन्नत हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। अब आगे आप जैसे लोगों की बात है, अल्लाह हम सबको जन्नत के काबिल कर दे। जन्नतियों के साथ जन्नत में जाते ही क्या होगा, सूरत अल आराफ बिल्कुल आपको एंट्री का वक्त सिखा रही है, पूरा कुरान आगे भरेगा, आप बार बार पढ़ेंगे जन्नत के मंजर, लेकिन अब यहाँ क्या है, जस्ट एंट्रिंग, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे उस वक्त क्या होगा। वह नजा नमाफी सुदूर हिम मिन गिल्लिन, इनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो कदूरत होगी, कदूरत क्या होती है, एनिमिटी, एनवी, किसी के लिए ऐसे दिल में कुछ बुगज रख लेना, जिनके दिलों में कोई भी ऐसे जज्बे होंगे हम उसे निकाल देंगे, इनके नीचे नहरें बहती होंगी। हदीस में आता है कि जन्नत के बाहर एक नहर है, जब उसमें लोगों को डालेंगे तो दिलों से हसद कीने बुगज खत्म होंगे। आप कहेंगे वो कैसे, आप देखिए बाज दफा शोहर भी नेक होते हैं, बीवी भी नेक है, पर एक आंख नहीं भाते, खट पट लगी रहती है। अब पता चला जन्नत में वो मियां साहब भी नजर आ गए, आपकी तो जन्नत ही खराब हो गई, सास बहू दोनों जन्नत में देख के, अरे ये यहां भी पहुंच गई, क्या मेरा नसीब है, अरे अम्मा भी यहां भी मौजूद है, तो अब तो जन्नत खराब हो गई। तो अल्लाह जन्नत में जाने से पहले एक नहर में दिल धो देंगे, दिलों में गंजी, याद रखिए दो नेक लोगों के दिल में भी रंजिश है, और आज तो अल्लाह माफ करे दीनदारों की रंजिशें दुनियादारों से ज्यादा है, तब क्या करें वो अच्छा ये फुला जमात वाले आगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन लोगों, अच्छा ये फुला जमात, नहीं नहीं हमारा भी हो रहा है तौरा कुरान, हम भी कर रहे हैं, अच्छा यूज करो, नहीं नहीं हम भी करते हैं, अभी हमारा भी होता है, जो अभी खत्म, जो खत्म तुम उसको रोका, और वहां जाके वो नाम ले रहे, अरे ये यहाँ वाले भी आ गए, वो यहाँ भी आ गए, दुनिया में भी इन्होंने मस्जिदों में कब्जे किए हुए थे, यहाँ भी कब्जे कर दे आगे। तो अब अल्लाह ने इस मुश्किल से आपको मुझे निकाल दिया कि हमारे दिलों को पाक कर दिया, इंशाल्लाह डोंट वरी यू विल बी हैप्पी विद योर हस्बैंड, सही है ना। एक जगह मैंने दर्स में बात की तो मैंने कहा कि हम में से कोई है ऐसा जो अपना हस्बैंड छोड़ना चाहे दूसरा ले, तो सभी यही सोचते हैं ना कि हस्बैंड जैसे भी अल्लाह करे उनको भी हम दोनों जन्नत में आ जाए, तो पीछे एक अम्मा बढ़कर, ना जी मैं बदलना, ना जी मैं और छिड़का नहीं खानी तो उन अम्मा जी को अगर अल्लाह वो जिंदा सुन रही है तो अल्लाह उनका दिल साफ कर देगा, फिर बाबा जी की जुबान कड़वी नहीं रहेगी वहां। तो अल्लाह ताला दिलों को साफ करे। और मैं आपको एक जुमला बोलूं, ये मेरी अपनी जिंदगी का स्लोगन है, वहां जाके जो दिल साफ करने हैं तो जन्नत में जाना है ना। आज दुनिया में अपना दिल हर बंदे से साफ कर ले, आपकी दुनिया जन्नत है। और अल्लाह जानता है मैं अपने ऊपर बड़ी बात नहीं कर सकती, मैं कह सकती हूं कि मेरे दिल में दुनिया के किसी बंदे के लिए कोई गिल की ना बुगस नहीं है, ना रिश्तेदार, ना दीनदार, ना दुनियादार। इवन गुनाहगार लोगों को देखकर भी कोई गुस्सा नहीं आता, तरस आता है। क्यों? इसलिए कि हमें इंसान दोस्त बनना है। ये जो हम नेकियों के तसव्वुर पे दूसरों को पीछे कर देते हैं ना, ये जहन्नमी, ये काफिर, ये मुशरिक, ये मुनाफिक, इसी से भी दूरियां पैदा होती हैं। दिलों को साफ करें। अल्लाह के नबी ने एक मौके पे कहा कि अगर कल सुबह जो यहां से गुजरेगा ना शख्स, वो जन्नती है। अब सहाबा को टो लग गई, वो तो इस तड़प में होते थे कि कौन लोग जन्नती, हम भी वही काम करें। अगले दिन देखा एक सहाबी गुजरे हैं, वजू किया हुआ, दाढ़ी में से पानी के निशान भी कतरों के गिर रहे हैं, वो वहां से गुजरे। बस एक दूसरे सहाबी उनके पीछे लग गए, उनके घर गए, कहा कि मैं 3 दिन आपका मेहमान रह सकता हूँ? मैंने कसम खा ली अपने घर नहीं जाऊंगा। वहां कितना आसान था किसी का मेहमान बनना, आज तो अल्लाह माफ करे हम पहले उससे कितनी तैयारियां करते हैं, कहते अचानक ही आ गए आप। अच्छा जी, अभी तो हमने तैयारी नहीं की, क्योंकि हमने फिर प्रोटोकॉल भी तो बहुत देना होता है ना। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह करें, और मोमिन मोमिन की मदद करता है। उसने कहा 3 दिन तक वो सहाबी उनके घर रहे, और जब वो घर में रहे, अब तीसरा दिन आ गया ना था, अब जाने का वक्त आ गया, आप सब्र ना हुआ। कहने लगे मैं सच बताऊं मैं क्यों आया था, मैं तो आपका मामूल देख रहा था कि मैं देखूं आप करते क्या, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये बात कही है। अब वो सहाबी थे और कहते क्या, कहते मुझे आप में और अपने में कोई फर्क नहीं दिखा। ये भी नोट कीजिएगा, बाज लोग सोचते हैं कि दीन वालों के साथ रहेंगे ना तो वो कोई दिल समाती लोग होंगे, हवाओं पे चलेंगे, पानी पे तैरेंगे, पर रात को इनके निकल आते हैं और वो खाते नहीं, वो पीते नहीं। सो ये माफोकुल फितरत निजाम जो कायम किया ना दीन वालों से, इसी से फिर वो सब तसव्वुफ और सूफीज्म और पर्सनैलिटी वर्शिप और क्या क्या शुरू हो गया। हमारे शेख ऐसे, हमारे पीर साहब ऐसे, सब दीन वाले इंसान होते हैं। हर इंसान इंसान है, नबी भी इंसान होते थे, उनके अंदर भी कई ऐसी चीजें थी जो इंसान सोच भी नहीं सकता था। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि जब वो उनके करीब रहे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे, मैंने तो आप में कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो मेरे में नहीं है। आप भी नमाज जमात से पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी तहज्जुद पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, या मियार देखिएगा। उनको तहज्जुद भी आम लगी। आज हम कहते हैं हाँ पता चल गया, आप चूंकि 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं ना इसलिए आप जन्नती हैं। नहीं, कहते सब है, मुझे कोई खास बात नहीं दिखी, आप बताएं कि कोई आप कैसी नेकी है। तो उन्होंने फिर उस वक्त क्या कहा कि भाई मुझे तो अपने अंदर कोई खूबी नहीं दिखती, एक बात मैं कह सकता हूं कि मैं कभी किसी इंसान के बारे में अपने दिल में बुराई नहीं रखता। तो ये गंदगी रख के सोना के रात को सोने से पहले बिस्तर पे बैठे और कहें अल्लाह मैंने सबको माफ किया, और अल्लाह मैन्ना का फुबुन तो हिब्बुल अफवा फाफवनी। रातें आने वाली हैं, फिर जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुलेगा। पहले हम लोगों को माफ करें, फिर लोग हमें करेंगे। और खुद हम माफ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम बड़े बहुत हैं। जितना आपके अंदर आजजी होगी, अंदर से टूटे होंगे, आपको लोगों की बातें नहीं चुभेंगी, आप कहेंगे इन्होंने मेरे साथ थोड़ा किया, इनको ज्यादा करना चाहिए। और चुभती किसको है दूसरों की बातें, जो खुद को बहुत बड़ा समझता है, मैं इतना बड़ा, मुझे इन्होंने ये कह दिया, मुझे देख के नाक चढ़ा दिया, मुझे देख के उठी नहीं, मुझे इन्होंने ऐसे समझा, मुझे ये सुना दी। लोग शादियों में जाते हैं रोते हुए वापस आते हैं, कोई किसी का एक जुमला सुनना है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे दिलों को दुनिया में खुला कर दे, फिर जो आपके अंदर से खुशी फूटेगी ना, आप उसको खुद महसूस करेंगे। यानी कीनों को ले लेके चलते फिरते हैं, इसीलिए दुखी हैं, और ये भी डिफरेंट किस्म की साइकोलॉजिकल किस्म की बीमारियों की सूरत में सामने आती है। अब जन्नतियों का पहला जुमला क्या होगा उसको नोट कीजिए, आप जब जन्नत में जाएंगी, दुआ करें आमीन, तो आप क्या कहेंगे, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें ये रास्ता दिखाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया, हम कहां थे कि इसकी राह पाते, लौला अन हदाना अल्लाह, अगर हमारा रब ही हमारी रहनुमाई ना करता। और आज हम इसका इकरार करते हैं कि लकद जात रुसुल रब्बिना बिल हक, हमारे पास हमारे रब के भेजे हुए हक के साथ आए थे। ये है ईमान वाले का पहला जुमला। अलहम से बात शुरू हुई और अलहम पे खत्म हुई। एक ईमान वाले को हर नमाज से पहले जो शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह कराई, ये जन्नत में जाने का आगाज सिखा दिया। जब तक सारी तारीफें और सारे शुक्र अल्लाह के नहीं करेंगे, कभी दिल में आजजी नहीं आएगी। हर क्रेडिट अल्लाह को, हिदायत उसने दी, रास्ते उसने खोले, कुरान की तरफ वो ले आया, اب کہاں گنجائش اس میں کہ میں اتنی نیک، میں نے اتنی محنت کی، میں تہجد گزار، میں نے تو 10 دفعہ قرآن پڑھ لیا، میں نے وہ کیا، دے دیا، یہ کر دیا، کریڈٹ اللہ کو دے رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ ہمیں نہ پکڑتا. اور اے اللہ، ہمارے عمل تو اتنے خوبصورت بھی نہیں تھے جتنی پیاری تو نے جنت دے دی. دیکھیے یہ اس دنیا میں بھی عادت بنے، جب کوئی نعمت ملے اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں. کیا اس وقت یہ قرآن کا سننا میرے اور آپ کے لیے ایک نعمت ہے؟ تو آپ ذرا اس نعمت کو اس دعا پہ لائیے. ساری تعریف اللہ کے لیے جو ہمیں اس کتاب کے لیے لے آیا. ہم کہاں تھے اس کتاب کو سننے کے لیے، آنے کے لیے، اگر اللہ ہمیں راستہ نہ دکھاتا. کئی سسٹر نے، یقین کریں، جب شیئرنگ کرتی ہیں رونا آ جاتا ہے. مجھے کسی سسٹر کی شیئرنگ یاد آ گئی. ہماری لندن میں کلاسز ہوتی تھیں تو کسی سے انہوں نے سنا کلاس ہے. اب وہ بہت خوبصورت ہوٹل تھا، یعنی لوگ وہاں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کلاس ہے. خیر وہ آئیں اور اس کے ارد گرد کچھ کمرشل ایریا ہے، تو وہ راستہ اس کا ذرا نئے لوگوں کو مشکل لگتا ہے ڈھونڈنے کے لیے. کہتی میں 1 گھنٹہ پورا گھوم گھوم کے چلی گئی، مجھے راستہ نہیں ملا، چلی گئی واپس. اب بھی ان کی ہمت نہ ٹوٹی. پھر اگلے دوسرے تیسرے دن پھر ڈھونڈتی ڈھانڈتی آئی اور کہہ رہی میں 2-3 دن سے صرف باہر آ کے گھوم گھام کے چلی جاتی ہوں. آج میں آئی تو مجھے کچھ لوگ نظر آئے جو اسکارف میں تھے اور یونیفارم لگا، تو میں نے سوچا ادھر کچھ ہوگا، تو میں ان کے پیچھے چلتی گئی تو آ گئی. کون ان کو لے کر آیا؟ اللہ تڑپ دیکھتا ہے. ہم تو ذرا سے 19 سے 20 گرم کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے، اب ہم گھر سے ہی سن لیں گے. نہیں، اب یہ ہو گیا، اب گھر سے سنتے. اب گرمی لگے گی، اب نہیں جاتے. اچھا، اب روزہ لگتا ہے، اب نہیں جاتے. تو آپ دیکھیے کہ جتنی اللہ سے توفیق مانگیں گے اللہ اتنی دے گا آپ کو. مجھے کوئی کہہ دے کہ شاپنگ کرنی ہے، مال میں جا کے کریں یا نیٹ پہ بیٹھ کے کریں، کون سے کریں گے؟ مال میں جائیں گے، مزہ کریں گے، دیکھیں گے، چلیں گے. شاپنگ گھر سے مجبوری میں کر لیں گے، تو پڑھنا ہم گھر میں بغیر مجبوری کے کر لیں. فرق پڑتا ہے گھر میں اور ادھر بیٹھنے میں؟ آپ میں سے کسی نے دونوں ایکسپیرینس کیے ان دنوں میں؟ فرق پڑتا ہے؟ کوئی ایک فرق بتا دے کیا فرق ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ علم تو مل جاتا ہے الحمدللہ، گھر میں آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے. اگر جس ماحول میں ہم آپ کو یہاں بٹھاتے ہیں نا، سانس بھی روک کے، اگر آپ گھر میں اسی ماحول میں بیٹھ رہی ہیں تو انشاءاللہ گھر میں بھی فائدہ ہوگا. ہمارے ہزاروں اسٹوڈینٹس ہیں ماشاءاللہ ورلڈ وائڈ جو گھروں سے ہی پڑھ کے بڑے ہوئے. یہ ہم جن کے پاس آئے یہ سارے والنٹیئرز بھی تو گھروں کے پڑھے ہوئے ہیں نا، رائٹ عتیق؟ صحیح ہے نا فائزہ، آپ بھی صحیح کہتے ہیں نا. یہ خود پہ جبر کر کے بیٹھے، اور گھر میں خود پہ جبر کرنا اتنا مشکل ہے. کل فائزہ نے مجھے کہا ان کو کھانسی تھی تو یہاں سے اٹھ کے صرف یہ دوسرے روم میں گئی ہیں جہاں اسکرین لگی ہوئی ہے اتنی بڑی، آپ نے دیکھی ہوگی، پوری وال کی اسکرین ہے، لیکن وہ مدر وتھ کڈس بیٹھتی ہیں اور وہاں. تو یہ ادھر سے اٹھ کے سوچ کے ساتھ چلی گئی کہ ان کی کھانسی نہ ڈسٹرب کرے. تو وہاں جا کے کیا ہوا تھا کری، مجھے وہاں جا کے نیند آنے لگی. یہاں اگر یہ سوئیں گی تو آپ مجھے اشارہ کریے گا. لیکن یہ حقیقت ہے، گھر میں سنیں گے تو خود پہ جبر کریں گے، تھکن ہوگی، پریشان ہوں گے. کبھی آپ 3 گھنٹے ایسے نہیں بیٹھ سکتے جیسے یہاں بیٹھتے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ میں کپڑے ساتھ طے کرنا شروع ہو جاتا ہوں، کوئی پیاز چھیل رہا ہوگا، کوئی لہسن چھیل رہا ہوگا. تو اب آپ سب بھی کل سے اپنا لہسن ادھر لے آئیں تو پھر دیکھتے ہیں ماحول ہوگا. تو بہت فرق ہوتا ہے لائف چیز، اور یہ ونس ا وائل ایک چانس ہوتا ہے، اور اس کے لیے تو جتنی بھی ایفرٹ ہو جائے. آج اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں دنیا میں تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہم باہر سے بیٹھ کے ان سے سن لیں، یا ہم چاہیں گے کہ ہم اس محفل کا حصہ بنیں؟ پھر ماحول کا حصہ. یہاں تو آپ کو اتنے لوگ سکھا رہے ہیں، آپ سب ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ایکسپریشن، ان کی آنکھوں کا گیلا ہونا، رونا، تو یہ سب ہمیں مدد دیتا ہے. تو لہٰذا جنتی جنت میں جا کے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ آپ کی رحمت سے یہ سب آسان ہوا، ورنہ ہمارے لیے تو یہ کچھ ممکن نہ تھا. وَنُودُ عَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اس وقت ندا آئے گی، اے اللہ ہمارے کانوں کو بھی یہ پکار سنانا. کیا کہا جائے گا؟ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی جو تم کرتے تھے. کیا دعاؤں کے بدلے میں ملی جنت؟ خواہشوں کے بدلے میں ملی؟ کس کے بدلے میں ملی ہے؟ اعمال. تو پھر وہی جملہ دہرا لیجئے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے جنت ملے گی. میں صرف اپنے آن لائن ساتھیوں سے محسرت تو کر لوں، آپ کے جوش میں میں نے ان کو ہی بلا دیا، وہ تو دکھی ہو گئے ہوں گے میری باتیں سن کے. بھئی آپ سب آن لائن سے سننے لے، مجھے معاف کریں. لیکن جو پہنچ ہی نہیں سکتا اس کے لیے تو یہ آپشن ہے اور ایک بڑی اچھی چیز ہے نا. لیکن جو پہنچ سکے، یہ میری بات ان کے لیے تھی. لیکن حقیقت ہے کہ جو گھر میں سن کے خود کو جما لیتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ اصل وہی لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر خود جبر کیا. اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں بیٹھ کے بھی چپکے سے منہ میں کچھ ڈال لیتے ہیں اور میسج بھی چیک کر لیتے ہیں اور فون کو جواب بھی دے دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سائلنٹ پہ کیا پتہ نہیں چلا. चले बाय द वे लिखिए तो सही, सब कहाँ लिख रहे हैं? ये लिखते हैं कि हम तो कुरान हाथ में लेकर बैठे हैं, माशाल्लाह। सिस्टर आमना कनाडा से बोल रही है, बाकी किस हाल में? तड़प और प्यास है माशा, वी फील वी आर विद आप, माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन क्लास रूम इन्वायरमेंट इन द मस्जिद। ये बर्लिन वाले हैं, जर्मनी में एक जगह हमारा ऐसी स्टेशन बना हुआ है, तो वहां ये साथी सुन रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी जगहों में लोग ऐसे ही सुन रहे हैं, सिर्फ नेट से आवाज आ रही है और वो सुनते हैं। ये तो शुरू ही हो गए, हम मुसलसल कुरान लेकर बैठे हैं। वी सिट इन वन प्लेस अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान खोलकर नोट्स ले रहे हैं। वी आर ऑल इन क्लास रूम विद सास, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सास को साथ लेके बैठी है, ये भी एक बड़ी नेमत है कि घर वालों को साथ लिया। कुरान मेरे हाथ में है और क्या कहती है, मैं बच्चों को सुला रही हूँ लेकिन साथ आपका दर्स भी सुन रही हूँ, कहीं आप ही ना सो जाए, पता चले अम्मा सो गई बच्चे सोए ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह विद कुरान एंड सुपरवाइजिंग किड्स कैन नॉट मूव, यहाँ से कहती है मैं मूव ही नहीं कर सकती, घर वाले भी सुनते रहते हैं। आल्सो हैविंग कुरान विद अस बर्लिन मस्जिद, सॉरी ये कनेटिकट के, लेकिन बर्लिन एक और भी है, इन्होंने मेरी इसलाह कर दी, ये बर्लिन मस्जिद कनेटिकट की है। चले बहरहाल ये कि सब ने अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए कि अपनी अपनी राय लिख दी, और जो नहीं लिख रहे वो यकीनन सोए हुए हैं। आईडीज तो रूम में तकरीबन बहुत सारी है माशाल्लाह, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैसेज तो 20-25 के आए, तो बाकी सो गए होंगे, आंख लगी जब उठेगी तो उनको बता दीजिएगा, वो कह रही नहीं अब उठ गए हैं। यकीन करें एक यूनिवर्सल फैमिली, ये तो कभी आप सिस्टर अतीक से सुने ना, ये पिछले 5-10 साल से क्या खेल चल रहा है, ऐसे लगता है कि एक बिग फैमिली। मैं कितना ट्रेवल करती हूँ, कितनी जगहों पे, और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं अपने खानदान के एक फैमिली मेंबर से उठ के अब दूसरे पे आ गई हूँ। जैसे हम कभी अपने एक मामू के घर जाते हैं, खाला के, भाई के, माँ के, वही फीलिंग्स आती हैं। तो मुझे तो कभी नहीं फील होता कि मैं यूरोप में हूँ या नॉर्वे में हूँ या अमेरिका में हूँ या पाकिस्तान, मुझे सब जगह एक ही जैसे लोग देखते हैं। जन्नत वाले जन्नत में पहुंच गए, उनको अल्लाह ने खुश कर दिया। अब जरा सुनिए एक और चीज, वनाद असहाबुल जन्नत असहाबन नार यन कद वजत नमा वादना रब्बुना हक्का, फिर ये जन्नत के लोग दोजख वालों से पुकार कर कहेंगे। इमेजिन कीजिए, जन्नत ही ऊपर है और जहन्नम ही नीचे है। अहदीस से पता चलता है कि आज भी जन्नत है वो आसमानों पे और जहन्नम जमीन की तहों में। अब वो ऊपर है ये नीचे है, और एक कॉन्फ्रेंस कॉल मिल गई, दोनों एक दूसरे से बातें करें, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? आज दुनिया में आप देखिए ग्लोब पे आप बात कर लेते हैं तो वहां क्या मसला होगा? तो जन्नती जहन्नमियों की पुकार आपस में क्या है? फिर ये जन्नत के लोग दोजख वालों से पुकार कर कहेंगे, हमने इन सारे वादों को ठीक पाया जो हमारे रब ने हमसे किए थे, क्या तुमने भी इन वादों को ठीक पाया जो हमारे रब ने हमसे किए थे, क्या तुमने भी इन वादों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे? वो जवाब देंगे हाँ। क्या वादा अल्लाह का जहन्नमियों से? आग, खमीम, खौलते हुए पानियों का, और जन्नतियों को तो जन्नत मिल ही गई। तब एक पुकारने वाला इनके दरमियान पुकारेगा, अल्लानतुल्लाहि अलल जालिमीन, अल्लाह की लानत इन जालिमों पर। कौन थे वो? अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे। वह यबगूनहा इवजा, और इसे टेढ़ा करना चाहते थे। और तीसरा जुर्म, बहुम बिल आखिरती काफिरून, और वो आखिरत का इनकार करते थे। देख लीजिए फिर इसमें कुफर की बात नहीं है। मत सोचिए कि जहन्नुम में सिर्फ काफिर जाएंगे। लोगों को अल्लाह के रास्तों से रोकने वाले, बदगुमान करने वाले, दीन को पुरानी बात कहने वाले और दीन को इस तरह से पेश करने वाले कि जिसके नतीजे में लोगों को ये गिल्ट हो जाए कि शायद हम बेवकूफी का ही कोई काम करने लग गए, ऐसे लोग जिन्होंने किसी कॉल से किसी को बदगुमान कर दिया, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं जाने की, ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह सुबहान तआला यहाँ हमारे सामने कैसे पेश करते हैं कि ये वहां जहन्नुम में डाले जाएंगे और वो आखरत के मुनकर थे। वह बैनहुमा हिजाब, और इन दोनों के बीच में एक आड़ होगी, जिसकी बुलंदियों पर यानी आराफ पर कुछ और लोग होंगे, वो हर एक को इसके क्याफे से पहचानेंगे। अब यह है सूरत अल आराफ के आराफ होने की वजह, समझ लीजिए कि आराफ एक ऐसी जगह है जहां जन्नत में जाने वाले नहीं, जहन्नुम में जाने वाले नहीं, पोस्टपोन्ड रिजल्ट वाले लोग होंगे, जिनके लिए जन्नत का फैसला हो गया लेकिन उनकी कोई एक चीज उनको जन्नत में जाने से रोक रही है। इमेजिन करें, सारा पेपर क्लियर है, बस एक सब्जेक्ट के नंबर जरा नहीं चल रहे। अब ऐसे लोगों को कुछ अरसा अल्लाह ताला आराफ के मुकाम पे खड़ा करेगा। अपने ऊपर लेके सोचे, मैट्रिक का रिजल्ट था, बीए का, मास्टर्स का, मेडिकल का, सबका रिजल्ट निकल गया और मुबारकें और खुशखबरियां दी जा रही हैं, اور آپ کو بھی یقین ہے کہ میری تو پوزیشن آنی تھی، لیکن آپ کا تو نام کسی جگہ ہی نہیں آیا، نہ اول والوں میں، نہ دوم میں، نہ فیلوں میں. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہیں. پھر وہ چیک کر لو، کہتے صبر کیجئے، آپ کے ایک نمبر ہمیں نہیں ملے. وہ ساری خوشی ادھوری ہو جاتی ہے. بعد میں بے شک آپ فرسٹ ہی کیوں نہ آ جائیں، آپ کہتے ہیں اس دن تو خبر نہ پھیلی جس دن سب کی پھیلی. شاید میرا وہی گناہ جس کو میں معمولی سمجھتی ہوں مجھے اس جگہ روکنے کا ذریعہ بن جائے. بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ وہاں روکے گا. اب ذرا آپ ان کی فیلنگز کو نوٹ کیجئے گا. بالکل یقین کریں کہ ویڈیو کیمرے کے ساتھ دیکھنے والا منظر ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کا حسن ہے کہ قرآن کو اتنے خوبصورت طریقے سے پیش کیا کہ ہم اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں. فرمایا رجال یعرفون کلا بسیماہم، اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، وہ ہر ایک کو اس کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر. سوچیے رشک سا دیکھ رہے ہیں، حسرت ہے، کیا یہ جنت میں چلے گئے؟ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے. یہ بڑی بڑی شخصیات کون ہیں جو دنیا میں بڑی معروف تھیں، جن کے نام پہ گناہ اور فیشن اور خرابیاں اور ظلم و ستم چلتا تھا، اور جو سیاست کے علم بردار تھے، جنہوں نے انسانیت کے لیے ناسور بن کر جینا سیکھا؟ لوگ ان کو جہنم میں پہچانیں گے تو ان سے کہیں گے دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے گروہ تمہارے کچھ کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ نہیں دے گا؟ کون یہ غریب بیچارے بلال اور عبداللہ بن مسعود اور حبیب اور یہ، ان کو کہاں جنت ملنی ہے؟ دیکھیے دنیا کی دولت کے ساتھ انسان کو ایک غلط فہمی آنے لگتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے دنیا میں سب دے دیا نا، دیکھنا چپکے سے وہاں بھی دے دے گا. سورۃ الکہف میں ہم پڑھیں گے باغبلا قصہ، وہیں رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا، اگر میں پہنچ بھی گیا اللہ کے پاس دیکھنا دنیا سے بھی اچھا ملے گا. وہ سوچتے ہیں دنیا میں ہمیں سب پروٹوکول دیتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں، یس سر، میڈم، باس سر، یہ وہ، اللہ بھی ایسے ہی کرے گا. تو وہ ان کے بارے میں کہیں گے تمہیں کیا ہوا کہ تم تو وہ غریبوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، کیا ہوا جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے ان کو تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ نہ دے گا، آج انہیں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ حسن ہے. یعنی ریزلٹس ان ایکسپیکٹڈ نکلے. جن کے لیے تم نے سوچا تھا ان کو جنت نہیں ملنی، وہ تو پہنچ گئے جنتوں میں، اور تم یہاں اپنی چودراہٹوں اور بڑائیوں اور اپنے لیڈر اور اپنے سردار ہونے اور جو کسی نے سابقہ لا کر رکھا تھا گناہوں کے ساتھ اپنے نام پہ، وہ اس کو کسی کام نہ دیا. اللہ کسی کے نام سے متاثر نہیں ہے، کسی کے قوم سے، خاندان سے، برادری سے اللہ متاثر نہیں ہوتا. اصل چیز آپ کا میرا اپنا عمل ہے. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں سے کہیں گے، اب ذرا اس بے بسی کو دیکھیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے لیے حرام نہ چھوڑ سکے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، خواہشوں پہ مرتے تھے، آج جنتیوں سے دیکھے بھیک مانگ رہے ہیں کیا. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو، کوئی ایک انگور ڈال دو، کوئی انار کا دانا جنت کا دے دو، کچھ تو دے دو. وہ جواب دیں گے، اب اس جواب کو ہائی لائٹ کیجیے، اس میں آپ کو ریزن سمجھ آ رہی ہے. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، فرمایا اللہ نے یہ دونوں چیزیں حق کے انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں. لفظ حرام قابل غور ہے، یعنی کا منع کر دیا، تمہیں نہیں دے سکتے، وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو گیو یو، کہا تم پہ حرام ہے. یاد دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں حرام نہیں چھوڑ سکے نا، آج جنت کی نعمتیں حرام ہیں. کون سے کافر؟ پھر جات رکھی ڈس بلیور نہیں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. اس کو تو ہائی لائٹ کریں، یہ وہ نام نہاد مسلمان ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. فرمایا کن کافروں پر؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. چلیے 3 سیکنڈ تک دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ مجھے دین کو کھیل نہ بنانے دینا. کئی رنگوں میں لوگوں نے آج دین کو کھیل بنا ہوا ہے. فن دین، فن نہیں ہے تو دین نہیں، انجوائے ہے تو دین ہے. इंजॉयमेंट नहीं, मजा ही नहीं आया, बोर हो गए। हाँ मजा आएगा जब वो काम करेंगे। यानी आज इतना फन का कल्चर आ गया कि लोग दीन के नाम पर भी फन पसंद करते हैं। पान चले, छालियां फिरें, बीच में कहीं खुशबुएं, अगरबत्तियां, थोड़ी बातें भी कर लें, थोड़ा कुछ देख भी लें, आईने में थोड़ी देर बाद अपने आप को देख लें, कहते हैं ये बड़ी अच्छी महफिल है। और जहां 3 घंटे बैठकर गुम सुम अपने ख्यालों में खोना पड़े, जरा सी इशारे पे, जरा सी आवाज आए तो इशारे होने लग जाएं, ऐसी जगहों में हमारा तो दम घुटता है। हम इतने ओप्रेस नहीं हो सकते। अल्लाह ताला कहते हैं वहां उनको अफसोस होगा। और अगली आयत को फिर साथ जोड़ लीजिए, जो बात मैं अपने लफ्जों में कह रही होती है ना, अक्सर उससे अगली आयत में वही होता है अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मैंने आगे आयत नहीं देखी थी, कि वलकद जीना हम भी किताब, हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसको हमने इल्म की बिना पर तफसील से बयान कर दिया, और जो ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। सच है कि नहीं? ये किताब है जो लोगों को जन्नत में लेकर जाएगी। हदीस में आता है, इन अल्लाह यरफो बिहाजल किताबी व यदाउ बिहा आखरीन, बेशक अल्लाह इस किताब के जरिए से दूसरों को इज्जत देता है और इसी किताब के जरिए अल्लाह कौमों को जलील करता है। ये अल्लाह का असूल समझ लीजिए, अभी से समझ लें। जो कौम इस किताब को उठाती है ना, अल्लाह उस कौम को दुनिया में उठाता है, और जो कौम इस किताब को पीछे डाल देती है ना, अल्लाह उस कौम को पीछे डाल देता है। आपको क्या लगता है आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा के साथ क्या हुआ है? हमने इस किताब को पीछे डाला, हम पीछे डल गए, दुनिया में कहीं हमारा कोई नाम नहीं है। इंशाल्लाह अब हम जब इस किताब को उठा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस किताब को उठाने के साथ अब उम्मत उठेगी, सोई भी उम्मत उठ रही है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें दूसरों को नाराज करना कबूल कर लें हम, लेकिन अल्लाह के दीन को खेलना बनाए। आज एक रस्म में आप शामिल नहीं हुए, आपकी बहन नाराज। आप कहते क्या करें, अब बहन को कैसे नाराज करूं, चलो दीन की बात है, अल्लाह को मना लूंगी। आप उनकी चीजों में चले गए, अल्लाह कहते लाहन। तो फॉर्म रहने वालों की इज्जत होती है। हल यंजुरून इल्ला तावील हो, नहीं वो मुंतजिर मगर इसकी हकीकत के, यानी अब क्या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के मुंतजिर हैं कि वो इंजाम सामने आ जाए जिसकी ये किताब खबर दे रही है? सोचिए, एंड का वेट कर रहे हो कि अब वाकई तुम्हारा बुरा अंजाम हो ही जाए? अल्लाह अकबर है। अब क्या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के मुंतजिर हैं कि वो इंजाम सामने आ जाए जिसकी ये किताब खबर दे रही है? जिस रोज वो इंजाम सामने आ गया तो वही लोग जिन्होंने पहले इसे नजरअंदाज कर दिया था कहेंगे कि वाकई हमारे रब के रसूल हक लेकर आए थे, क्या मैंने तो इस किताब को आज तक नजरअंदाज नहीं किया हुआ था? फिर क्या अब हमें कुछ सिफारिशी मिलेंगे जो हमारे हक में सिफारिश करें, या हमें दोबारा वापिस ही भेज दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे इसके बजाय दूसरे तरीके पर काम करके दिखाएं? देखिए वहां जाके हसरत है, ए अल्लाह एक बार दुनिया में भेज, नुरद्दु फनअमल गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, अल्लाह गिव अस वन मोर चांस, एक चांस दे दे कि हम वापस दुनिया में जाएं और वो काम करें जो नहीं करते थे। जवाब क्या मिलेगा? कद खसिरू अनफुसहुम वदल्ला अनहुम मा कानू यफ्तरून, उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया और वो सारे झूठ जो उन्होंने घड़ रखे थे आज इनसे गुम हो गए। वहां हसरत है। बस लोग सोचते हैं जब तक हमें अल्लाह के दीन के अहकाम की हिकमतें समझ नहीं आएंगी ना, हम अमल नहीं करेंगे। सॉरी, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। अभी हमें हिकमत ही नहीं समझ आई कि ये लिबास और हिजाब की हिकमत क्या है, और अभी तक तो हमें हराम हलाल और इस मीट और उसकी हिकमत ही नहीं समझ आई। तो याद रखिए, ये जरूरी नहीं है कि हिकमत पहले आए कि मौत पहले आए। अगर मौत आ गई तो फिर क्या होगा? आज आप और मैं खुद देखें, अल्लाह इस किताब की बात करते हैं लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी में उसकी कोर्स बुक्स में सबसे गैर अहम बुक कौन सी है, और कौन सी चीज को हम सिर्फ एक्स्ट्रास पे रखते हैं? आइए इन आयतों की तिलावत सुनते हैं, और इन सारी आयतों को जो भी हमने सुनी है इसके साथ हम अपने आप को रखेंगे, और चुपके चुपके वो दुआएं भी मांगेंगे जो हमारे मांगने की है इस वक्त।
أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا ما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی حسرت سے بچائے تو قرآن آپ کو واقعی امت بناتا ہے اور یہ سب یقین کریں اس کتاب کی محبت ہے ہم میں سے اکثر نے تو ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے